अब जब ये हालात होते हैं ना कि जब अपनों ने इतना समझा, इतना नीचे डालना चाहा, लोगों ने समझा कि ये चुप हो जाएगा, अल्लाह कहते चुप नहीं हुआ। वकाला इन्नी जाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, आपने कहा मैं तो जा रहा हूँ अपने रब की तरफ, वो मेरी रहनुमाई करेगा। बस तुमसे उम्मीदें ख़त्म, तुमसे अब मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं रही, मेरा रब मेरी मदद करेगा, अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगूंगा, वो मुझे बताएगा क्या ठीक है क्या गलत है, तुम्हारे शिर्क पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहिम को यकीन हो गया कि अब इस कौम में कोई रमक नहीं रही, ये अपने शिर्क को छोड़ेंगे कोई नहीं, और नतीजा क्या होगा कि मेरा भी दीन ज़ाया होगा, मैं अब चलता हूँ। या अम्बिया कराम के मामले में अल्लाह की एक सुन्नत याद रखिएगा, जब तक लोग नबियों से फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह ताला उन कौमों को अजाबों से बचाई रखती है। जब नबियों की कदर छूट जाती है, लोग उनकी बात नहीं मानते, जैसे कि यहाँ कौम इब्राहिम के साथ हुआ, तो नबी वहाँ से निकल जाते हैं। जब चीज़ फ़ायदे में नहीं होती, इस्तेमाल में नहीं होती, उसको उठाकर आप भी पीछे रख देते हैं। अल्लाह कहते हैं क्यों मैं अपने नबी को ज़ाया करूँ, यहाँ इनको निकालो, और यहाँ से निकाल के आगे किया, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं तो जा रहा अपने रब की तरफ, वो मेरी रहनुमाई करेगा, मैं अपने रब को याद करूंगा, मैं क्यों तुम्हारे अंदर अपने आप को खपाऊं, मेरा काम तुम जानो तुम्हारा काम, मैं जाऊं अपने रब को याद करूं पुकारूं, कुछ और उसके बंदे उनको अल्लाह से जोड़ने वाला कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए इला रब्बी का है मुराद क्या, कि इला खैसा अमरनी रब्बी, मैं वहाँ चला जाऊँगा जब मेरा रब मुझे हुक्म देगा, जहाँ मैं और कुछ काम कर सकूँ। कितनी खुद सपुर्दगी है। और फिर इसके बाद आप मिस्र से, और मिस्र के बाद फिर शाम की तरफ चले गए, हिजरत की। जब लोगों ने आग लगाई तो अल्लाह ने नबी को वहाँ से निकाल दिया। अल्लाह ताला चाहते तो उस आग में इब्राहिम को जला देते, लेकिन अल्लाह नहीं जलाते। क्यों? हिजरत करके उसको और नेकियों का मौका देते हैं। सूरत अनकबूत की आयत 24 में भी हम पढ़ चुके कि फांजाहुल्लाहु मिनन्नार, फिर अल्लाह ने इसको आग से बचा लिया, और उस आग के दिनों में इनके पास फरिश्ता आके इनको अल्लाह ताला की तरफ से तसल्लियाँ और दिलासे दिया करता था। यही बातें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मक्का वालों को सुनवा रहे हैं कि देखो जिस इब्राहिम का नाम लेकर तुम आज अपनी नस्बतें जोड़ते हो, कल उनका तौहीद और शिर्क के साथ क्या ताल्लुक़ था, और आज तुम्हारा क्या, और अगर आज तुम इस नबी के रास्ते में रोड़े अटकाओगे तो याद रखना कि फिर तुम्हारा हाल क्या होगा जो उस कौम का हुआ कि इब्राहिम तो उस मुल्क से निकले और जाते जाते कह गए इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। और आप देखिए इन आयतों के कुछ सालों के बाद अल्लाह के नबी भी ये जुमले बोलते हुए चले गए, इन्नी ज़ाहिबुन, कुछ नहीं पता था मदीना में क्या होगा, बस जिसकी खातिर जा रहा हूँ उसको पता है मेरे लिए क्या सही है, वो खुद ही करा देगा। जब मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती, मेरा इनका कोई दुनिया का झगड़ा ही कोई नहीं, मेरा इनसे कोई ख़ानदान का ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ते नातों का ताल्लुक नहीं, कोई लेन नहीं कोई देन नहीं, फिर मैं चलता हूँ तकदीर के भरोसे अल्लाह की तरफ। और साथ ही उस वक्त दुआ निकली मुँह से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। चोट पड़ती है ना तो दिल के अंदर की चीज़ें ज़ुबान पे आने लगती हैं। उस वक़्त तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद की नेमत से महरूम थे, अल्लाह ताला ने उनको अपने कामों के लिए चुना हुआ था, और उस वक्त तक सिर्फ आपकी एक बीवी थी हज़रत सारा, और आपके भतीजे हज़रत लूत ये आप पर ईमान ला चुके थे, लिहाजा आप वहाँ से उनको लेकर चल पड़े। ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह अब यहाँ तो अपने ख़ानदान में था, अपने लोगों में था, पता नहीं आगे कहाँ जाऊँगा, तो बच्चा दे दे, और कौन सा दे दे जो सालेहीन में से हो, जो नेक बच्चा हो, जो वाकई तेरा ऐसा दिया हुआ तोहफा हो कि जो मेरी बात को समझ सके। का अच्छा, फबशर ना हुब्बी गुलाम इन हलीम, फिर हमने उसको खुशखबरी सुना दी एक हिल्म वाले बेटे की। हिजरतों के बाद दुआएं और दुआओं के बाद नेमतें। पहली हिजरत के बाद क्या मिल रहा बेटा, आगे भी देखिएगा कुछ मिलेगा। हम कहते हैं ना हिजरत करें, ना कुर्बानी करें, ना अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करें, ना ख़ानदान बिरादरी को नाराज़ करें, सब मीठा मीठा, सब अच्छा अच्छा, और अल्लाह ताला के आओ जी फबशर ना हो भी गुलाम इन हलीम। हिजरतों के बाद कुर्बानियों के बाद अल्लाह से नेमतें मिलती हैं, और अल्लाह ताला ने उनको बेटा दे दिया। सूरत इब्राहिम की आयत 39 में भी हम पढ़ चुके हैं कि इस पर हज़रत इब्राहिम की ज़ुबान से जो दुआ निकली थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल्किबर इस्माईल व इसहाक, शुक्र है उस ज़ात का जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अता फरमाए। तो पता क्या चलता है कि इंसान बुढ़ापे में अपने लिए कुछ तलब करता है, और अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। बाइबल में आता है कि जिस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 82 साल थी या 86 साल, 86 ईयर्स की उम्र थी, और हज़रत इसहाक की पैदाइश के वक्त आप 100 बरस के हो चुके थे। आज के डॉक्टर्स तो कहेंगे ये एक मौजज़ा है, ये कैसे हो सकता है। अब इमेजिन करें कि जब माँ बाप इस किस्म के होते हैं तो अल्लाह हिल्म वाले बच्चे देता है, ये कैसा था बच्चा हिल्म वाला, अब इसकी एक अमली तस्वीर। फलम्मा बलगा मा उसाय قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين। बस जब वो इतना बड़ा हो गया कि आपके साथ दौड़ धूप कर सके, यानी चलने फिरने की उम्र में, जब बच्चे और ज़्यादा प्यारे लगते हैं, जब वो और अच्छे लगते हैं, तो आपने फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, मैंने देखा है ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। रिवायात में आते कि 3 रातों तक हज़रत इब्राहिम यही ख्वाब देखते रहे या दिखाए जाते रहे कि वो अपने प्यारे बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। सुबह उठ के बेटे को ये बता दिया कि बेटा मैं तो तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, अब बता तेरी क्या राय। ये नहीं क्या कि चल तुझे ज़िबह करूँ। फनजुर माज़ तरा, औलाद का मशवरा लेना क्या है, औलाद को उस नेकी में शामिल कर रहे हैं। बहुत प्यारे नुक्ते हैं, इस पे हमने जब पिछली क्लास में बात की थी तो बहुत तफसील से बात हुई थी कि नेकी के काम अकेले ना किया करें, बच्चों से मशवरे भी लिया करें, राय भी लिया करें, उनका हाथ डलवाया करें। ये कह देते बेटा मैंने ख्वाब देख लिया चल अब कुर्बान हो, बेटा शायद तब भी हो जाता, लेकिन फनजुर माज़ तरा कहकर बेटे को जो इज़्ज़त दी, जो उसके ईमान को चेक किया, और देखना भी ये चाहते थे कि जो ईमान मेरा है बेटे का भी है, मैं तो कुदरत के खामोश इशारों को समझ रहा हूँ, कहीं बेटा डिप्लोमेटिक तो नहीं हो चुका, कहीं बेटा इसकी कोई तावील तो नहीं करता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा। बेटे का इम्तिहान भी ले सकते थे और देख रहे थे कि वाकई मुझे अल्लाह ने बेटा सालेहीन में से दिया कि नहीं। काला या अबतिफ अलमा तो उमर, बेटा भी कैसा प्यारा था, हलीम, कहने लगे या अबती, या अभी नहीं कहा, या अबती मेरे प्यारे अब्बा। अरब लोग किसी भी रिश्ते के साथ ता लगाते हैं ना उसमें मोहब्बत होती है, या अबती तिफल मात उमर, कर लीजिए जो आपको कह दिया गया, कोई एतराज़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये किसने सिखाया भी इनको, ये फीजाने नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। कौन से स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा था, कौन से कॉलेज इंग्लिश मीडियम के उर्दू मीडियम के कहाँ का था, ये माँ और बाप की नेकी का असर था। जब बाप इब्राहिम होता है तो बेटा इस्माइल होता है, और जब माँ हाजरा होती है तो बेटा इस्माइल होता है। फलम्मा असलमा, फिर जब दोनों मुसलमान हो गए, दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया, दिल से मुसलमान हो गए, वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, क्यों, ताकि ज़िबा करते हुए इसकी शक्ल ना दिखे और ऐसा ना हो कि उसकी शक्ल देखकर प्यार आ जाए। और कहते हैं कि बेटे ने कहा कि अब्बा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना कि ऐसा ना हो कि आपको मुझ पे रहम आ जाए, प्यार आ जाए। तल्लहु लिल जबीन, लिटा दिया पेशानी के बल, एक ही धुन, एक ही काम कि अल्लाह का हुक्म मानना है, अल्लाह की बात माननी है। और फिर वना दई ना हुआ इब्राहिम, फिर हमने पुकारा क्या इब्राहिम, बस अब हाथ रोक लीजिए, क्यों, कद सद्दकतर रुया, बेशक आपने सच कर दिखाया ख्वाब को। कैसे सच दिखाया, अभी बेटा तो ज़िबा ही नहीं हुआ। कहा नहीं, हमने को करवाना थोड़ी था, हम तो आपका दिल देख रहे थे, क्योंकि जब बंदा कटने के लिए तैयार हो जाता है ना तो अल्लाह बचाने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई तावीलात करते और ऐसे मुफ्ती ढूंढते और ऐसे आलिम ढूंढते जो इसकी कोई डाइल्यूट सी तफसीर करते, तो हो सकता है बेटा सड़क में गिर के कहीं गिर जाता, किसी बस के नीचे आता। इतनी बड़ी हकीकत है जिसको आज अगर हम जान लेना, वल्लाही कसम खा के कहूँगी, अगर आज इस हकीकत को हम जान लेना तो हमारे काम यूं हों जैसे परिंदों के काम होते हैं, हम असबाब में उलझ जाते हैं। और बात क्या है कि जब बंदा कटने के लिए तैयार होता है तो अल्लाह बचाने के लिए तैयार होता है, और जब बंदा जान छुड़ा रहा होता है ना तो अल्लाह जान लेने पे तैयार हो जाता है। ये जो हमारे रास्तों की मुश्किलात है ना, दुनिया के या दीन के, ये सिर्फ हमारे अपनी नियतों और हमारे हौसलों की कमज़ोरी की दलील है। कल्बे सलीम नहीं अभी हुआ, अभी अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं, कादिर कदीर ही नहीं है, अल्लाह को समझा ही कुछ नहीं। हम तावीलात करते हैं, क्या करें आज के दौर में, कैसे हो सकता है, का कैसे नहीं हो सकता, कितनी तावीलात हो सकती थी, ख्वाब था हकीकत भी नहीं थी। और हमें पता कि नबी का ख्वाब सच होता है, अल्लाह ख्वाबों के ज़रिए नबियों को क्या कुछ दिखा देता है। और बेटे को कुर्बान, और अल्लाह ताला ने पुकारा या इब्राहिम, ऐसे ही तो अल्लाह ने इब्राहिम को खलील नहीं बनाया। जो बात इब्राहिम को सूझती थी हमें क्यों नहीं सूझती, वो सोच नहीं है, पर्दे हैं अभी, रुकावटें बहुत हैं। अल्लाह कह रहे हैं कद सद्दकत रुया, कर लिया जो तूने करना था, अब और कुछ नहीं कराना हमने तुझसे। इन न कज़ा लिक नजिल मुहसिन, हम इसी तरह बदला देते हैं मुहसिनों को, कैसे कि बेटे की जगह दुम्बा ज़िबा करा देते हैं। जन्नत से दुम्बा आया, शीप, इब्राहिम तो छुरी चला चुके थे, ज़रा अपने दिल पे हाथ तो रखें आप, इब्राहिम को तो नहीं पता था ये होने वाला है, छुरी चल चुकी थी, छुरी ने भी इनकार नहीं किया, कट गई, इब्राहिम का दिल भी तो साथ कटा होगा, लेकिन जब देखा होगा तो यहाँ तो बेटा सलामत पड़ा है, और उसके बाद देखा कि एक जानवर कटा। वल्लाही वल्लाही आज भी वही रब है, लेकिन आज इब्राहिम नहीं है, और आज इस्माइल जैसी सबमिशन नहीं है। हम खुद अल्लाह की रहमतों को और हम खुद अल्लाह की मदद को खुद से दूर करते हैं, चक्कर लगवाते हैं बड़े बड़े, खुद लगवाते हैं अपने कामों के ना होने में, क्योंकि हम अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी नहीं होते। हम अपने काम अपने हाथ में लेते हैं, जो अपने काम रब के हाथ में देगा, इन न कज़ा लिक नज़िल मुहसिनीन, है इंसान थे और बाप थे और बुढ़ापे की औलाद और मांगी हुई दुआएँ, रब्बी हबली मिन सालेहीन, अल्लाह ताला कह रहे इन न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, हाँ ये आजमाइश बहुत खुली थी, कोई कम अकल वाला भी बता सकता है कि ये आजमाइश बहुत बड़ी होती है। औलाद की कुर्बानी, अल्लाहु अकबर, कत्ल कर देना, उसको ज़िबा करना, और वो भी अपने हाथ से, कोई इधर दूर आंखों से निगाहों से कोई मर गया, खप गया, कोई शहीद भी हो गया, तकलीफ़ नहीं आती, कहाँ बंदा अपने हाथ से ज़िबा करे। और मैं इसको पढ़ रही हूँ ना तो मेरे जहन में अबू बकर सिद्दीक़ का जुमला आ रहा है, सुना देती हूँ कि कहीं को ये ना कहे कि ये तो सिर्फ नबियों की शान थी। नबी ने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ग़ज़वे बदर के बाद अपने बेटे को कहते हैं, बल्कि पहले बेटे ने कहा जो भी कुफर पे था, कहा अब्बा आपको पता है मैदान जंग में कई बार आप मेरी जद में आ चुके थे, मैं तलवार मारता तो आप पे जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा बाप है, मैं क्यों मारूं इसको, मेरा आखिर बाप है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि कमबख्त मैं तो तुझे सारे मैदान जंग में ढूँढ रहा था कि तू मुझे नज़र आए तो मैं अपने हाथ से तेरी गर्दन पे मारूं। कुछ लोगों ने इसकी हिकमत को समझने की बजाय साइड की चीज़ों पे उलझना शुरू किया, मसलन यहूद का ये झगड़ा है कि कुर्बानी जो थी वो इस्माइल की नहीं इसहाक की हुई, और वो इसी वजह से हज़रत इसहाक को ज़बीहुल्लाह कहते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायात से पता चलता है, और इस पे बहस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम इसके अंदर से कोई अमल की बात निकाल सकेंगे। फिर एक और छोटी सी बात इस वाक़े के बारे में है कि ये वो मौका था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में शैतान आया था इनके पास, और इनके पास आके ये बातें तावीलें सिखाईं कि देखो तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे, ये होगा, फिर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो आज हज के दौरान जो रमीय जमार तीन जगह पत्थर मारे जाते हैं वो इसी मौके की यादगार है कि हज़रत इब्राहिम ने शैतान को वेलकम नहीं किया कि हाँ तुमने तो मुझे बहुत अच्छी बात सुझा दी, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया, मैं तो ऐसी जज्बाती हो गई थी और मैं तो ऐसे जोश में आके पता नहीं क्या कुछ सोच रही थी, नहीं तावील नहीं की बल्कि उसको पत्थर मारे। हम जो काम आउज़ बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम करके करते हैं वही सुन्नत हज़रत इब्राहिम की थी, अमली तौर पे उन्होंने पत्थर मारे, और आज हर हाजी को मरवाए जाते हैं, कितने लोग हैं जो वहाँ से आके फिर पत्थर ही मारते हैं। लोग तो उन जमरात के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते और उसको यादगारें बना के पेश करते हैं कि भाई हम कभी गए थे और वहां जाके ये काम किया था, तो असल बात जो है वो कुर्बानी है। वफदई ना हो बि ज़िबह नज़ीम, अल्लाह ने एक बहुत बड़ी ज़िब के साथ उसको बचा लिया और फिर इसको क़यामत तक के लिए लोगों के लिए सुन्नत बनाया। आज लोग कुर्बानी का भी इनकार करते हुए दिखते हैं, कहते क्या ज़रूरत है बकरों छतरों को ज़िबा करने की, इन पैसों के हॉस्पिटल बना दो, सड़कें बना दो, और पैसे थोड़े। सिर्फ वही चीज़ें चुभती हैं आज लोगों को जो सुन्नतें हैं और नबियों की यादगारें हैं। तो बाद लोग ये सवाल पूछते हैं कुर्बानी के बारे में कि हम इस पैसे को किसी और काम में इस्तेमाल करें, तो नहीं। इसके ऊपर एक पूरी बुक है कुर्बानी के मसाइल, और एक और बुक इन्हीं आयात के बारे में बहुत ही यूज़फुल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बाप की हैसियत से किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की, और हम इन आयात की रोशनी में देख सकते हैं कि औलादों की तरबियत के लिए माँ बाप को क्या काम करने चाहिए। आगे इसके बाद अब अगला किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून का। अब यहाँ से लेके सूरत के आखिर तक आपने किस सोच के साथ सुनना है? जैसे एल्बम है कोई और आपने उसमें अपनी सारे प्यारों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, और कोई आपके घर में आता है या कोई प्यारा है तो आप उसको दिखाते हैं। मैं कह नहीं रही कि आप ऐसा करें, लेकिन सिर्फ इमेजिन करें कि आप अपने मुख्तलिफ ओकेजन की मुख्तलिफ रिश्तेदारों की तस्वीरें लगाते हैं, किसी ने ये किया वो किया, और कोई आता है और आप एक एक सफ़ा पलटते जाते हैं और उनकी बातें बताते हैं, देखो ये फलां थे, ये मेरे दादा थे, ये फलां थे, ये बड़े नेक थे। क्योंकि इन आयतों को हम पीछे कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, यहाँ आप एक स्ट्रेच में आप पढ़ के देखेंगे कि सूरत के एंड तक अल्लाह ताला हमें तकरीबन 7 अंबिया कराम से तारुफ करवाएंगे, और जो पैगाम है वो यही है कि सब ने अल्लाह के हुक्म को सुनकर तावील करने की बजाय समेना वताना का फरमाया। आयत नंबर 114, वलकत मनन्ना अला मूसा व हारून, और हमने एहसान फरमाया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर। कैसे? वनज्जैनाहुमा वक़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने बचा लिया इनको और इन दोनों की कौम को एक बहुत बड़े कर्ब से। क्या कर्ब था वो? फिरौन का, उसकी ग़ुलामी का, बेटों के ज़िबा का। देखिए एक तरफ इब्राहिम खुद बेटा ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह ने बचाया, दूसरी तरफ उन्हीं की नस्लों में से एक ऐसी कौम आई कि जिस पर दुश्मन मुसल्लत हो गया। ठीक है हम इस वक्त फिरौन के एंगल से नहीं देखेंगे कि फिरौन ने बेटों को ज़िबा कराया, लेकिन यहाँ इस एंगल से ज़रूर देखेंगे कि जो कौमें खुद कुर्बानी देने का इनकार कर देती हैं ना, फिर अल्लाह दुश्मनों को मुसल्लत करते हैं कि वो इनकी औलादों को खा जाएं, ज़िबा कर दें। फिरौन जैसे दुश्मन ऐसे ही कौमों पर मुसल्लत नहीं होते, फिरौन जैसे दुश्मन जो हैं कौमों पर ऐसे ही मुसल्लत नहीं होते, ये इस बात की सज़ा होते हैं कि ये लोग अल्लाह के हुक्म को सुनकर मानते नहीं हैं। तो बेटे तो ज़िबा वैसे भी होते, अगर अल्लाह का हुक्म समझते हुए इंसान वो काम कर ले, कई आने वाले फितनों से बच जाता है। याद रखिए, तू बचा बचा के ना रखे से, ये जो हम बचा बचा के रखते हैं ना अपनी ज़ात को, ये बचता कोई भी नहीं है, लेकिन दे दे के देखेंगे तो नाम बच जाएगा, जैसे कि इब्राहिम का बचा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व नसर ना हम फकान हुमुल गालिबीन, फिर हमने इनकी मदद फरमाई, बस वो हो गए वही गलबा पाने वाले। आज के पिसे हुए बनी इसराइल कल गालिबीन में हो गए, क्यों? कि जब बुजुर्गों का जुर्म माफ हुआ, जो उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को छोड़ के बच्चों को ज़िबा करवाया और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल मामलात आए, अगली कौम चूँकि इन मुसाइब में पली, फिर उनको समझ आई कि ये ठीक काम नहीं है, हमारे बड़ों का तौर तरीका ठीक नहीं, उन्होंने अपनी इसलाह की, अल्लाह ने गलबा दे दिया। ये कौमों के अरूज और ज़वाल की कहानी है कि जब कौमें अपने माँ बाप या अपने बाप दादा की गलतियों को दोहराने की बजाय उससे इबरत लेकर नसीहत लेकर जीती हैं, तो अल्लाह ताला फिर उन कौमों को गालिब करवाते हैं। आज के मुसलमानों के लिए भी यही पैगाम है, कुर्बानी की सतह पे जीना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह वही गालिब है। वातैनाहुम अल-किताब अल-मुस्तबीन, और हमने बख्शी इन दोनों को ऐसी किताब जो बहुत वाज़े थी बयान करने वाली। कौन सी? तौरात। मूसा और हारून दोनों को मिली। वाज़े कैसे थी? कि दुनिया का जो उस दौर का मसला था, जो भी लोगों के मसाइल थे, उन सब का जवाब उस किताब में लिखा हुआ था। और हकीकत है कि किताबें हर दौर की जो होती हैं वो मुस्तबीन ही होती हैं। जैसे कुरान के लिए मुबीन का लफ्ज़ आता है, बयान का लफ्ज़ आता है, तो किताबें अगर मुबहम रह जाएं तो अमल कैसे करेंगे? क्या आज हमारे लोगों के अंदर भी किताब वाज़े है? क्या आज हम भी समझ आई भी किताब पढ़ते हैं या हम सिर्फ वजीफों वाली किताब पढ़ते हैं। जब किताब मुस्तबीन के दर्जे पे आती है ना, तो वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम, फिर हमने हिदायत बख्शी उनको सीधे रास्ते की, फिर हिदायत मिलती है। बंद किताब पढ़ने वालों को हिदायत नहीं मिलती, हो सकता है सवाब मिल जाए अगर ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अकायद ख़राब है और किताब के मना से रुक नहीं रहे तो हो सकता है कि वो पढ़ना भी ज़्यादा फ़ायदा ना दे। लेकिन जब किताब खुलती है तो सिराते मुस्तकीम नज़र आने लगता है, फिर नफ़ा और नुकसान खूब अच्छी तरह दिखता है, फिर इंसान को सही फ़ैसले करने की तौफीक होती है, फिर उसको पता चलता है कि मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के अतबार से क्या चीज़ बेहतर है। वह तरक ना अलैहिमा फिल आखिरीन, फिर हमने छोड़ दिए इनके ज़िक्र खैर को पीछे आने वालों में, जैसे आज हम और आप कर रहे हैं। कितने खुशकिस्मत लगते हैं ये लोग हमें इस किताब में पढ़ते हुए, लेकिन ज़रा इनकी ज़िंदगियों में झांकिए तो लोग कहेंगे अनुमिनु कमा मनसुफ़ा, हम भी बेवकूफ़ों जैसे हो जाए। लोगों ने तो इनको बेवकूफ़ कहा, दीवाना कहा, मजनू कहा, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इनका जिक्र खैर रखा। हम सिर्फ इसलिए भी कुर्बानियों से डर जाते हैं कि हम अपने बारे में गलत बातें नहीं सुनना चाहते, अपनी रेपुटेशन लूज़ होने का डर होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कोई रेपुटेशन नहीं लूज़ होगी, तुम अल्लाह के हुक्मों को मानते हो, आज के नाराज़ लोग कल तुमसे खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम जज़ा देते हैं मुहसिनीन को, एहसान के दर्जे पर काम करने वाले, चल चलाओ के दर्जे पर नहीं। और एहसान का इन्ना कतराहू, गोया के अल्लाह को देख रहे हो, उसको देख रहे हो, यानी जो काम करो आसन दर्जे पे करो, सिर्फ जान छुड़ाने वाला काम ना करो। तकवा के पहले ही दर्जे पे ना अटक जाओ, आखिरी दर्जों पे जाओ जो कि एहसान है। इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। इतना कुछ करके फिर ईमान वाले बंदे बने, ऐसे ही तो नहीं होते बंदा ईमान वाला, ये क्रेडिट ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, कुछ करना पड़ता है फिर बात बनती है। और इसी तरह एल्बम का अगला सफ़ा पलटा जाता है, वइन्ना लिलयास लमिनल मुरसलीन, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी मुरसलीन में से थे, पैगंबरों में से थे। क्या हुआ इनके साथ, इस क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तकून, याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा क्या तुम डरते नहीं हो, किस बात से, अतदऊना बालम व तज़रूना अहसनल खालिकीन, क्या तुम इबादत करते हो बाल की, ये उनके बुत का नाम था, और छोड़ देते हो अहसनुल खालिकीन को। हज़रत इलियास का जिक्र कम आता है कुरान पाक में, सिर्फ दो मुकाम आते हैं, एक ये मुकाम और एक पीछे हम पढ़ चुके सूरत अल अनाम की आयत नंबर 85 में। इनका ज़माना जो है ये 775 775 से तकरीबन 850 कबल मसीह का है, यानी हज़रत ईसा से पहले की शख्सियत है। कहते हैं कि जिलात नाम का एक इलाका था, वहाँ रहते थे, आज के दौर में इसको उर्दन कहते हैं, उसी का एक कोना है ये, और दरियाए जरमूक के करीब इनकी बस्ती थी। बाइबल में इनको ईलिया कहते हैं। इनके बारे में जो रिवायात हमें मिलती हैं, कहते हैं कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे रोजाम के दौर में, जब बनी इसराइल की हुकूमत दो हिस्सों में बट गई, एक हिस्सा बैतुल मक़दस में चला गया और दूसरा जो था वो आले दाऊद के पास रहा, तो उस दौर में अल्लाह ताला ने फिर लोगों के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ, बड़ी लंबी कहानी है जिस वक्त मौका नहीं है सुनाने का आपको, लेकिन बहरहाल ये है कि उस दौर में लोग बाल नाम के एक बुत को पूजते थे, जैसे लात मनात उज़्ज़ा थे उस दौर में, इसी तरह बाल थे। तो इन्होंने उस बाल से लोगों को रोका कि देखो तुम क्या करते हो, ये कोई दुरुस्त तरीका तो नहीं है, तो लोग इनके दुश्मन हो गए और बिलाखिर फिर इनके साथ वही किया जो बाकी नबियों के साथ किया गया, तकजीब हुई, और इन्होंने उस दौर के रिवाज के साथ अपने आप को बिल्कुल मैच नहीं किया, और वक्त का जो बादशाह था उसके सामने भी खड़े हो गए। इनकी काफ़ी ज़्यादा कोटेशन हमें मिलती हैं बाइबल की भी इनके बारे में, लेकिन पैगाम यही था कि अला तत्तकून, अल्लाह को छोड़कर बाल नामी खुदा को मानते हो। बाल का लफ्ज़ी मानी होता है आका, सरदार और मालिक, हमारे यहाँ किसके लिए ये लफ्ज़ बोलते हैं, बाल बच्चों का क्या हाल है, ये सर के बालों का हाल नहीं है पूछते, वो ये बाल होता है। पहले लोग शोहर को अक्का सरदार समझते थे तो बोलते थे, अब तो कहाँ बोलते होंगे बेचारे। बहरहाल इलाह के मानों में ये इस्तेमाल करते थे, जैसे देवता का मानी या इस तरह की, और उन्होंने इसकी पूरी एक माला बनाई हुई थी, बाल की बीवी भी उन्होंने बनाई हुई थी, स्तारात उसका नाम था। बहरहाल किस्सा मकसद यह कि ये भी उस दौर में आए और अल्लाह की तरफ लोगों को माइल किया, कहा कौन सा रब? अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुम अल्अव्वलीन, उस अल्लाह को जो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे से पहलों का भी है। लोगों को ये बात कभी अच्छी नहीं लगती कि हमारे बुजुर्गों हमारे बुतों को छोड़कर तुम हमें एक अल्लाह की तरफ जोड़ो। फकज़्ज़बूहू, बस उन्होंने आपको झुटला दिया। फ़इन्नहुम लमुख़दरून, बस यकीनन इनको पकड़ कर हाजिर किया जाएगा। यानी ये लोग कभी हक बात कहने वालों को पसंद नहीं करते। अब हो क्या गए हज़रत इलियास? इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, देख रहे हैं मुखलस लफ्ज़, मुखलस नहीं मुखलस, इतनों की तकजीब और इतनों के छुटलाए जाने के बाद बंदा चुना जाता है। अगर सारे लोग हमारी बात मानते रहे ना, तो यकीन करें हम खुद ही फितनों का शिकार हो जाएं। और ये जो बाल नाम की जो बुत्ता कहते हैं, इसका जो मुजस्मा उन्होंने बनाया था 20 गज लंबा सोने का मुजस्मा था, 4 मुंह थे इसके, और जिसके मंदिर के खादिम जो थे 400 थे। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इलियास को भेजा, उन्होंने समझाया बताया, तो लोग उनके दुश्मन हो गए। इसी के नाम पे फिर शहर था इनका बालबक, बाल लफ्ज लिख के आगे बाकाफ डाल दें, बालबक, आज भी उसके खंडरात मौजूद हैं और उसके अंदर से बुत निकलते हैं। और किस तरह इन कौमों ने अल्लाह ताला के हुक्मों को जब ना माना, अल्लाह ताला ने इनको नीस्तो नाबूद कर दिया और जो झुटलाए गए उनको बचा लिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने छोड़ दिए इनके जिक्र खैर को बाद में आने वालों के लिए। अल्लाह ताला किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता। कुछ नबियों का तذکرہ कुरान पाक में बहुत दफ़ा आता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के लिए बहुत कुर्बानियाँ की, बहुत कुछ सहा। कुछ का काम आता है, कुछ बिल्कुल थोड़ी सी जगह के लिए भेजेंगे, कुछ बहुत सारे लोगों के लिए भेजेंगे। जिसका जितना अमल था उतनी जजा अल्लाह सुबहान तआला ने दे दी। और इस तरह से अब एक और नबी, सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियास पर, नबी थे। कैसे? इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह जजा देते हैं मुहसिनीन को, नेक काम करने वालों को। कैसे थे वो इलियासीन? इन्नहुम मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक ये हमारे ईमान वाले बंदों में से थे, मानने वाले बंदे थे, इनकार करने वाले नहीं थे। अब यहाँ इलियासीन का लफ्ज़ आ गया। आप अगर देखें तो पीछे जो नबी हैं वो इलियास थे, यहाँ थोड़ा सा लिखने में फ़र्क है। इलियासीन तो बास कहते हैं उन्हीं का तस्करा है, बास कहते हैं कि उन्हीं के साथ किसी और का तस्करा है। हमारे लिए बस इसमें यही काम है जो हमारे अमल के मुतल्लिक है, और वो क्या कि जो भी बंदा हो ये अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, और ऐसे लोग ज़िंदगी में कुर्बानियाँ कर कर के अल्लाह को दिखाते थे कि अल्लाह हम तेरे हुक्म के आगे दुनिया की हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को मैं जजा देता हूँ। अरब लोगों का एक रिवाज था कि असल लफ्ज़ के आगे नून लगा देते थे। बस कहते हैं कि इलियास लफ्ज़ के आगे या नून जो लगाए, ये अरबों की उस आदत है। जैसे तूरे सीना है ना, तो इसको तूरे सीनीन कहते हैं अरबी में, पढ़ते हैं आप सीनीन, असल में सीना नाम की वादी है। तो यहाँ इलियासीन से हज़रत इलियास ही मुराद है, लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो बदल दिया गया।